एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है, सभी सुनने वालों का स्वागत।
नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। ऐसी किताब जो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है, डॉक्टर ब्रेने ब्राउन की डेयरिंग ग्रेटली।
हाँ, डेयरिंग ग्रेटली। और ये किताब एक ऐसे सवाल से जूझती है जो शायद हम सब कभी ना कभी महसूस करते ही हैं।
बिल्कुल।
इस दुनिया में जहाँ हर तरफ परफेक्ट होने का दबाव है ना, जहाँ अपनी कमियां दिखाना भाई कमजोरी माना जाता है, वहाँ हिम्मत से कैसे जिए।
हाँ, यही हम सब कहीं ना कहीं उस दौड़ में हैं जहाँ लगता है कि हम कभी पर्याप्त नहीं हैं, चाहे वो काम में हो, रिश्तों में, या बस मतलब जैसे हम हैं। और इसी चक्कर में हम अपनी असलियत, अपनी नाजुक भावनाओं को, अपनी क्या कहते हैं असुरक्षाओं को छिपाने लगते हैं।
डर लगता है ना कि अगर लोग असलियत जान गए तो कहीं जज ना करें।
हाँ, या कमजोर समझ लें। और यही डर, यही चीज हमें खुलकर जीने से रोकती है,
नए रिश्ते बनाने से, कुछ नया आजमाने से।
डेयरिंग ग्रेटली इसी डर पर सीधा सवाल उठाती है।
बिल्कुल, ये किताब कहती है कि जिसे हम कमजोरी समझ बैठे हैं, मतलब अपनी वल्नरेबिलिटी, अपनी असुरक्षा को मानना, वही असल में साहस है,
साहस की जड़।
ये तो सुनने में थोड़ा मतलब उल्टा लगता है ना।
हाँ, थोड़ा चौंकाने वाला जरूर है।
तो चलिए इसी चौंकाने वाले लेकिन जरूरी विचार की गहराई में चलते हैं, लेकिन पहले थोड़ी बात लेखिका की कर लेते हैं, डॉक्टर ब्रेने ब्राउन।
हाँ, ये जानना जरूरी है, वो कोई ऐसी सेल्फ हेल्प लेखिका नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
वो ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में रिसर्च प्रोफेसर है और उन्होंने 20 साल से ज्यादा साहस, असुरक्षा, शर्म, सहानुभूति, इन मुश्किल पर बहुत ही मानवीय एहसासों पर काम किया है, उनको समझने में लगाया है।
और उनकी बातें सिर्फ हवा में नहीं है ना, मतलब सिर्फ थ्योरी नहीं है।
नहीं, उनकी रिसर्च की खास बात है ग्राउंडेड थ्योरी, मतलब उनके जो सिद्धांत हैं वो हजारों लोगों की सच्ची कहानियों, उनके इंटरव्यूज, उनके अनुभवों के विश्लेषण से निकले हैं।
अच्छा।
वो सिर्फ ये नहीं बताती कि हमें कैसा महसूस करना चाहिए, बल्कि ये समझाती हैं कि लोग असल में कैसा महसूस करते हैं और क्यों।
पर एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि वो खुद भी बहुत ईमानदारी से अपनी जिंदगी की बातें बताती हैं, अपने संघर्ष।
बिल्कुल। उनका 2010 का जो टेडेक्स टॉक था, द पावर ऑफ वल्नरेबिलिटी, वो तो कमाली था, करोड़ों लोगों ने देखा।
हाँ, देखा है मैंने भी।
उसी ने दुनिया को दिखाया कि भाई इस असुरक्षा पर बात करना कितना जरूरी है और कितना ताकतवर हो सकता है ये ईमानदारी, और रिसर्च का मेल ही उनकी ताकत है।
तो ये किताब डेयरिंग ग्रेटली, नाम ही कितना दमदार है, ये असल में हमें सिखाना क्या चाहती है, क्या है इसका सबसे बड़ा सेंट्रल आइडिया?
मेरा ख्याल से जो सबसे कह सकते हैं क्रांतिकारी बात है वो ये है कि ये असुरक्षा को देखने का हमारा नजरिया ही पलट देती है।
कैसे?
हम सोचते हैं असुरक्षा मतलब कमजोरी, डर, शर्म, है ना?
हाँ, बिल्कुल।
ब्रिने कहती है नहीं, असुरक्षा का मतलब है अनिश्चितता का सामना करना, भावनात्मक जोखिम उठाना, खुद को खुला रखना बिना गारंटी के। और यही वो जगह है जहां साहस, रचनात्मकता, प्यार, अपनापन, सब कुछ पैदा होता है।
अच्छा, मतलब जब हम किसी से प्यार का इजहार करते हैं या कोई नया काम शुरू करते हैं।
हाँ, या अपनी कोई कला दुनिया को दिखाते हैं, कोई मुश्किल बातचीत करते हैं,
इन सब में हम असुरक्षित महसूस करते हैं,
तो ये सब असल में साहस के काम है।
बिल्कुल,
ये साहस का सबसे सच्चा पैमाना है। किताब हमें थियोडोर रूजवेल्ट के उस मशहूर भाषण की याद दिलाती है, एरिना में आदमी।
हाँ, मैन इन द एरिना।
जिंदगी एक एरिना, मतलब एक अखाड़े जैसी है। किनारे बैठकर आलोचना करना तो बहुत आसान है।
हाँ, वो तो कोई भी कर सकता है,
लेकिन असली हिम्मत तो उस इंसान में है जो धूल मिट्टी में सना है, पसीने में लथपथ है, जो हारने का जोखिम उठाकर भी उस अखाड़े में उतरता है। डेयरिंग ग्रेटली का मतलब है उस अखाड़े में उतरने की हिम्मत करना।
पर हम अक्सर कतराते क्यों हैं? मतलब अखाड़े में उतरने से हमें क्या रोकता है?
यहीं पर ब्राउन उस चीज की बात करती हैं जिसे वो कहती हैं कमी की संस्कृति, स्कैसिटी कल्चर।
कमी की संस्कृति?
हाँ, ये हमारे समाज में बहुत गहराई तक फैली एक सोच है कि हम कभी पर्याप्त नहीं हैं। हमें हमेशा लगता है कुछ कम है, पैसा कम, सफलता कम, प्यार कम, यहाँ तक कि नींद भी कम।
हाँ, ये तो है।
ये कभी पूरा न पढ़ने वाली सोच हमें लगातार दूसरों से तुलना करने पर मजबूर करती है, चिंता में रखती है, अकेला महसूस कराती है।
और इसी डर और कमी के एहसास से बचने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ तो करते होंगे।
हम कवच पहन लेते हैं। ब्राउन इन्हें आर्मर कहती हैं, भावनात्मक कवच।
आर्मर, जैसे योद्धा पहनते हैं?
हाँ, कुछ वैसा ही। ये हमें चोट, आलोचना, शर्मिंदगी से बचाने के लिए होते हैं, जैसे परफेक्शनिज्म।
परफेक्शनिज्म मतलब हर चीज बिल्कुल सही करने की कोशिश।
हाँ, ये सोच कि अगर हम सब कुछ परफेक्ट करेंगे तो कोई हमारी गलती नहीं निकाल पाएगा, कोई हमें जज नहीं करेगा। और या फिर भावनाओं को सुन करना,
नंबिंग
सुन करना। हाँ, मुश्किल एहसास से बचने के लिए जरूरत से ज्यादा खाना पीना, शॉपिंग करना, या घंटों सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहना।
ओ, ये तो बहुत कॉमन है आजकल।
बिल्कुल, ये कवच हमें उस पल सुरक्षित तो महसूस कराते हैं, पर इनकी कीमत चुकानी पड़ती है।
क्या कीमत?
कीमत बहुत बड़ी है। जब हम दर्द से बचने के लिए ये कवच पहनते हैं या खुद को सुन करते हैं, तो हम अनजाने में खुशी, प्यार, अपनेपन जैसी अच्छी भावनाओं को महसूस करने की अपनी क्षमता को भी, मतलब, बंद कर देते हैं।
अच्छा, ऐसा भी होता है?
दबाएंगे तो दूसरी भी दब जाएगी। ये कवच हमें असल जिंदगी और गहरे रिश्तों से काट देते हैं।
बाप रे, तो फिर रास्ता क्या है? अगर ये कवच हमें काट रहे हैं तो इनके बिना कैसे जिएं? खासकर तब जब शर्म जैसी भावनाएं हमें घेर लेती हैं।
बिल्कुल, और यहीं पर मुझे लगता है किताब का दिल है। ब्राउन शर्म को, यानी शेम को, असुरक्षा का सबसे बड़ा दुश्मन मानती हैं।
शर्म,
और वो शर्म, मैं बुरा हूं, मुझ में ही कमी है, और अपराध बोध, मैंने कुछ बुरा किया, के बीच का फर्क बहुत अच्छे से समझाती हैं।
हाँ, ये फर्क जरूरी है।
अपराध बोध हमें बेहतर बनने के लिए प्रेरित कर सकता है। चलो, मैंने गलती की, सुधार लूं। लेकिन शर्म, वो हमें तोड़ देती है। हमें लगता है हम प्यार और अपनेपन के लायक ही नहीं हैं।
हमारे समाज में तो लोग क्या कहेंगे का डर ये शर्म को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। अपनी गलती या कमी किसी को बताने में कितनी हिचक होती है।
बिल्कुल, और ब्राउन कहती हैं कि शर्म का सबसे बड़ा इलाज है चुप्पी तोड़ना।
चुप्पी तोड़ना?
हाँ, शर्म अंधेरे में, अकेलेपन में पनपती है। लेकिन जब हम अपनी कहानी, अपनी शर्मिंदगी किसी ऐसे भरोसेमंद इंसान से साझा करते हैं जो हमें समझता है, सहानुभूति दिखाता है, तो शर्म की पकड़ ढीली पड़ जाती है। सहानुभूति, एम्पैथी, शर्म का एंटीडोट है। इसे वो शेम रेजिलियंस कहती हैं, मतलब शर्म से उभरने की क्षमता, और ये सीखा जा सकता है।
ये तो बहुत बहुत शक्तिशाली विचार है। मतलब कमजोरी छिपाने की बजाय उसे सही इंसान के साथ साझा करने में हिम्मत भी है और इलाज भी।
बिल्कुल।
तो अगर हम समेटना चाहें, वो कौन से मुख्य संदेश हैं जो इस किताब से हमें मिलते हैं?
सबसे पहला और मेरे ख्याल से सबसे जरूरी, असुरक्षा साहस है, कमजोरी नहीं। ये पूरी सोच ही बदल देता है।
जब आप डरते हुए भी कुछ करते हैं तो आप कमजोर नहीं, साहसी हैं।
हाँ। दूसरा, शर्म की ताकत को समझना और सहानुभूति की शक्ति को पहचानना। शर्म हमें अकेला करती है, लेकिन कनेक्शन और सहानुभूति उसे बेअसर कर सकते हैं।
अपनी कहानी कहना हिम्मत का काम है।
बिल्कुल। तीसरा, कमी की संस्कृति के असर को पहचानना। ये समझना कि समाज हमें लगातार कम क्यों महसूस कराता है, हमें इस बाहरी दबाव से लड़ने में मदद करता है, और ये चुनने में कि मैं पर्याप्त हूँ।
ये चुनना कि मैं जैसा हूँ ठीक हूँ।
हाँ। चौथा, हमारे भावनात्मक कवच, जैसे परफेक्शनिज्म या सुन करना, और उनकी असल कीमत को समझना कि ये हमें बचाते नहीं बल्कि जिंदगी के असली रस से दूर करते हैं।
खुशी, प्यार, जुड़ाव,
इन सब से। हाँ। और पांचवा, पूर्ण हृदय जीवन जीना, होल हार्टेड लिविंग। ये कोई मंजिल नहीं बल्कि एक अभ्यास है।
अभ्यास मतलब रोज की प्रैक्टिस।
हाँ, रोज का चुनाव। ये परफेक्ट होने के बारे में नहीं है, ये साहस, करुणा और जुड़ाव के साथ जीने का चुनाव है, अपनी कमियों और अपनी पूरी कहानी के साथ।
वाह, किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां भी हैं जो सीधे दिल में उतर जाती हैं, है ना? कुछ कोट्स, कौन सी बातें आपको सबसे ज्यादा असरदार लगी?
एक तो यही बुनियादी बात जो हमने कही, असुरक्षा कमजोरी नहीं है, ये हमारे साहस का सबसे बड़ा पैमाना है। ये असुरक्षा के डर को सम्मान में बदल देता है।
बिल्कुल। और शर्म पर वो बात कितनी राहत देती है। शर्म की शक्ति उसके अनकहे होने में है। अगर हम अपनी कहानी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा कर सकते हैं जो सहानुभूति और समझ के साथ प्रतिक्रिया करता है, तो शर्म जीवित नहीं रह सकती।
हाँ, ये सिर्फ समस्या नहीं बताता, एक रास्ता भी दिखाता है, प्रैक्टिकल।
और भावनाओं को दबाने के खतरे पर वो चेतावनी।
हाँ, वो भी बहुत जरूरी है। हम चुनिंदा रूप से भावनाओं को सुन नहीं कर सकते। जब हम दर्दनाक भावनाओं को सुन करते हैं, तो हम सकारात्मक भावनाओं को भी सुन कर देते हैं। ये याद रखना जरूरी है कि दर्द से भागने की कीमत खुशी से दूरी हो सकती है।
और परफेक्शनिज्म पर वो स्पष्टता भी मुझे बहुत अच्छी लगी।
कौन सी?
कि परफेक्शनिज्म अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश नहीं है। परफेक्शनिज्म या विश्वास है कि अगर हम परफेक्ट जीते हैं तो हम दोष, निर्णय और शर्म से बच सकते हैं।
हाँ, ये स्वस्थ कोशिश और डर पर आधारित दबाव के बीच फर्क करने में मदद करता है। बहुत जरूरी फर्क है ये।
और आखिर में साहस की वो सरल सी परिभाषा।
हाँ, वो भी बहुत प्यारी है। साहस दिखाने और खुद को देखे जाने देने से शुरू होता है। मतलब बड़े कारनामों का इंतजार मत करो, रोजमर्रा के पलों में मौजूद होना, खुद को सामने लाना, यही साहस है।
ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, प्रेरणा मिलती है, लेकिन असल जिंदगी में कैसे उतारें? हमारी रोजमर्रा की भाग दौड़ में इन विचारों का क्या मतलब है?
मतलब है, बहुत मतलब है। चलिए रिश्तों से शुरू करते हैं।
ठीक है।
परफेक्ट दिखने का बोझ उतार फेंकिए। अपनी गलती मान लेना, अपनी जरूरतें खुलकर बताना, या जब मुश्किल में हो तो दोस्त से मदद मांग लेना, ये सब डेयरिंग ग्रेटली है।
और इससे रिश्ते ज्यादा सच्चे होते हैं। बिल्कुल,
गहरे और सच्चे बनते हैं।
हाँ।
अच्छा, काम की जगह पर सोचिए।
हाँ, ऑफिस में।
हाँ, खासकर अगर कोई लीडरशिप रोल में है। एक ऐसा माहौल बनाना जहाँ लोग मतलब नए आइडिया देने में, सवाल पूछने में, या यहाँ तक कि अपनी गलतियों से सीखने में सुरक्षित महसूस करें।
जहाँ फीडबैक देना या लेना एक हमला ना लगे बल्कि सीखने का मौका हो।
एग्जैक्टली, ये विश्वास और रचनात्मकता को बढ़ाता है। अच्छा, और पेरेंटिंग में?
हाँ, बच्चों के साथ
ये तो और भी जरूरी है। बच्चों को ये सिखाना कि उनकी कीमत सिर्फ उनके मार्क्स या ट्रॉफीज में नहीं है, बल्कि वो जैसे हैं वैसे ही प्यार और अपनेपन के हकदार हैं। और ये हम कैसे सिखा सकते हैं?
कैसे?
खुद अपनी गलतियां मानकर, माफी मांगकर, हम बच्चों को दिखाते हैं कि इंसान होना क्या होता है। परफेक्ट बनने का दबाव डालने की बजाय उन्हें हिम्मत और लचीलापन सिखाना।
ये बहुत जरूरी है आजकल के दबाव भरे माहौल में।
आफ।
और व्यक्तिगत तौर पर हम खुद के साथ कैसे ज्यादा साहस दिखा सकते हैं?
सबसे पहले तो उस परफेक्शनिज्म को थोड़ा ढीला छोड़ें।
हाँ, कहना आसान है।
हाँ, पर कोशिश तो कर सकते हैं। कोई नया शौक शुरू करे, भले ही उसमें बिल्कुल अच्छे ना हो, सिर्फ मजे के लिए। कोई अधूरा क्रिएटिव काम किसी भरोसेमंद दोस्त को दिखाएं, या फिर अपनी सीमाएं तय करें, बाउंड्रीज सेट करना।
ना कहना।
हाँ, किसी चीज के लिए ना कहना, भले ही मुश्किल लगे, ये भी अपनी जरूरत और आत्मसम्मान को महत्व देना है। ये भी साहस है।
तो कुल मिला के इस किताब से निचोड़ क्या है? आपके लिए सबसे बड़ी सीख क्या रही?
मेरे लिए शायद ये कि असुरक्षा से भागना बेकार है। मतलब ये संभव ही नहीं है। जिंदगी के जो सबसे अच्छे हिस्से हैं, प्यार, अपनापन, खुशी, रचनात्मकता, वो सब उसी रास्ते पर मिलते हैं जहाँ थोड़ा जोखिम हो, थोड़ी अनिश्चितता हो। सवाल ये नहीं है कि क्या हम असुरक्षित महसूस करेंगे, वो तो करेंगे ही। सवाल ये है कि जब करेंगे तब हम क्या चुनेंगे, डर या साहस?
सही कहा। और मेरे लिए ये समझना कि शर्म, परफेक्शनिज्म, ये सब हमारी निजी कमियां नहीं है, बल्कि डर से निपटने के मानवीय तरीके हैं, ये जानना बड़ी राहत देता है।
हाँ, है ना?
किताब हमें बताती है कि डर महसूस करना ठीक है, पर डर को अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर बैठाना जरूरी नहीं। हम ज्यादा साहसी, ज्यादा करुणामय तरीके चुन सकते हैं।
शायद स्थायी सीख यही है कि पूर्ण हृदय जीने के लिए लगातार चुनना पड़ता है, आराम की बजाय साहस को,
निश्चितता की बजाय जिज्ञासा को,
और दूसरों की राय से ज्यादा अपनी असलियत को। ये आसान नहीं है, पर शायद यही ज्यादा सार्थक है।
हाँ, और ये किताब हमें खुद को और दूसरों को ज्यादा नरमी से, ज्यादा करुणा से देखने में मदद करती है। हम सब उस अरीना में हैं, है ना? अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं।
बिल्कुल, ये मैं याद दिलाती है कि गिरना शर्म की बात नहीं है, उठकर फिर कोशिश ना करना ज्यादा दुखद है। ये हमें अखाड़े में उतरने की हिम्मत देती है, चाहे नतीजा कुछ भी हो।
तो सुनने वालों के लिए आज का विचार छोड़ जाते हैं। आपकी जिंदगी का वो कौन सा एरीना है जहां आप उतरने से शायद थोड़ा हिचक रहे हैं? वो कौन सा एक छोटा सा कदम हो सकता है जिसे आप आज या इस हफ्ते डेयरिंग ग्रेटली का अभ्यास कर सकें?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।